तीन भुवन में सार पीतराग विज्ञान छेड़ाला की छतनी ढाल में मुनियों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। सबसे पहले मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, उनकी चर्चा आरंभ है। उस चर्चा में 5 महाव्रतों की बात और 5 समितियों की बात हुई थी। 5 समितियों में 4 हाथ जमीन देखकर चलना, हित मित्र प्रिय वचन बोलना, जो मुनिराज बोलेंगे तो हितकारी ही बोलेंगे, किसी को अहितकारी बात नहीं बताएंगे, और हितकारी बात भी बिल्कुल नियमित माने मित बहुत सीमा में, जैसा नहीं कि दिन भर बोलते ही रहेंगे, और वो भी प्रिय शब्दों में बोलेंगे। तो या भाषार एषणा समिति, तो भोजन करने जाएंगे तो उसमें आहार शुद्धि पूर्वक, इसमें कोई भी हिंसा ना हो, ऐसा उससे बचाव करेंगे। फिर आदान निक्षेपण, अपना पीछे कमंडल है, कोई शास्त्र है, उसे उठाएंगे और रखेंगे तो ये देख कर रखेंगे कि यहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। और मलमूत्र का क्षेपण करेंगे, कफ थूकेंगे कहीं तो देख करके कि कोई जीव जंतु तो नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, चींटी चींटे हैं, उनके ऊपर कफ गिर जाए तो खत्म हो जाएंगे ना। ऐसे छोटे छोटे जीव जा रहे हैं और बिना देखे हम पेशाब कर दें तो उन्हें गंगा जी की बाढ़ आ गई, ऐसा है ना उनके लिए। तो इतनी छोटी छोटी बातों में बेहिंसा से बचते हैं। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से तो बचते हैं और बड़ी बड़ी बातों में करें कुछ, तो वो कल्पना के बाहर की बात है कि नहीं है। ये 5 समिति, 3 गुप्ती मन वचन काय, इनको अपने आत्मा में लगाते हैं तो उनको मनोगुप्ती वचन गुप्ती और काय गुप्ती कहते हैं। फिर और बहुत स्नान नहीं करना, दांत दातुन नहीं करना, ये सब बहुत चीज़ें हैं जिन्हें आप 28 मिनटों में पढ़ लेना। मैं 2-3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए आपके हाथ में जो किताब है ना, उसमें 6वां छंद, इत बार दिन में ले आहार खरे अलप निज पान में, कच लोच करत न डरत परिश्रय सो लगे निज ध्यान में। अब एक बार दिन में आहार करते हैं, वो भी खड़े खड़े आहार करते हैं, वो भी अल्प आहार करते हैं, और अपने हाथ में लेके करते हैं। ये 4 बातें, 2 महाव्रतें 4 बातों के लिए खाने ही खाने से संबंधित हैं, कि सारा धर्म खाने में ही समाहित है। जरा विचार करो कि मुनिराज सारे जगत से पूरी तरह कट चुके हैं, इसलिए वो वन में जाके रहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वे वन में क्यों रहते हैं, नगर में रहें तो उनका भी लाभ और जनता को भी लाभ मिले। तो इन्हें वनवासी अपने यहाँ क्यों बताया गया है? तो स्थिति वास्तव में ये है कि जंगल में तो कितनी कितनी प्रतिकूलताएं हैं, मक्खी मच्छर से दास जहाँ जीव जंतु हैं, वे सब शरीर को खाते हैं, ध्यान से सुनना। और नगर के जो नागरिक हैं ये माथा खाते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए जितनी जरूरत माथे की है उतनी शरीर की भी है। इसलिए इस नगर से बचकर, तुम्हारी माथापच्ची से बचकर जंगल में रहना उनने पशुओं के पक्षियों के बीच में रहना पसंद किया। लेकिन आहार एक ऐसी चीज है کہ جس کے لیے انہیں نگر میں آنا ہی پڑے گا، اسراوک کے دروازے پہ جانا ہی پڑے گا. یدی یہ پاپی پیٹ نہیں ہوتا اور انہیں بھوجن کی آوشیکتا نہیں ہوتی تو وہ کبھی گرستوں سے سمپرک کرتے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں میں نے کرنا نہیں چاہیے. اب کیا کریں، کاجل کی کوٹھری میں کیسو ہی پروین جائے، ایک داغ آخر پہ لاگے پر لاگے ہی. یہ گرست کا گھر تو کاجل کی کوٹھری ہے، اس میں کوئی نہیں جائے گا تو بے داغ نکلنا بہت مشکل ہے. تو یہاں جانا ہے تو جیسے سینک بارڈر پر جاتا ہے تو ایسا ہی نہیں چلا جاتا ہے، وہ کبج وغیرہ باندھ کے جاتا ہے نا، کھاتی پر یہاں ہاتھوں میں ایسا کر کے. ایسے ہی منیراج جب نگر میں آتے ہیں تو بے مون کا کبج دھارن کر کے آتے ہیں، کیونکہ ان گرستوں سے الجھن تو تب ہوگی جب بولیں گے. جب بولیں گے نہیں تو کوئی پوچھ کے کرے گا کیا، اتر نہیں دیں گے، اور ہم بھی کسی سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ بھاشا دوسروں سے جوڑتی ہے اور انہیں کسی سے جڑنا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں بولیں. وہ تو آئے ہیں اور آگے تتکال انہیں واپس چلے جانا ہے، اس لیے مون لے کر کے آتے ہیں. نرنتر آئے آہار مل جائے خیال میں نا، تو اس میں بھی ایک شرط ہے کہ دن میں ایک بار، اور وہ بھی ٹائم بھی اس کا نکی ہے. ٹائم کون سا نکی ہے کہ صبح کے 10 بجے لگ بھگ. ایسا کیوں 12-1 بجے میں کیا دقت ہے، 8 بجے میں کیا دقت ہے، دن تو ہے نا. دن میں آہار کرنا ہے تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں نا کہ نہیں آ سکتے، کیونکہ یدی 8 بجے آئیں گے تو سب شراوک مندر میں بھگوان کی پوجن کر رہے ہوں گے، سوادھیائے کر رہے ہوں گے، پرچن ہو رہا ہوگا، تو وہ سن رہے ہوں گے، تو گھر پہ کھانا تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی ملے گا ہی نہیں. اور یدی 12-1 بجے آئیں گے تو سب لوگ کھانا کھا پی کر کے اپنے دکان پہ چلے گئے ہوں گے، ماتائیں بہنیں بھی چوکا مکے نبیٹ کر کے اور ٹی وی پہ کوئی سیریل دیکھنے لگی ہوں گی. کیوں تو اس وقت بھی بھوجن، تو جب بھوج مندر سے آ جائیں بھوجن تیار ہو جائے اور گھر والے بھوجن کریں نہیں، پھر وہی ٹائم ہے کہ منیراج اس ٹائم آ گئے، سمجھے نا، وہ صحیح ٹائم ہے. بس واسطو میں اب 10 بجے کہو، 10:30 بجے کہو، آپ بھاشا بدے مدے میں کچھ بھی کہہ لو، لیکن وہ ٹائم ہے کہ گھر میں مندر سے آ کر بھوجن بننے کی تیاری کا سمے ملے، وہ اتنے لیٹ نہیں ہوں کہ گھر والے کھا پی کر کے چلے جائیں. تب وہ دروازے پر شراوک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے دروازے پر منیراج نگر میں ہوئے تو ٹھیک اور نہ ہوئے تو ٹھیک، آہار دینے کے لیے منیراج کو پڑھانے کے لیے کھڑا. جب شراوک ایسا پالیں گے تبھی تو منیراج کو ان دشٹ آہار ملے گا. کہ صاحب ہے ہی نہیں تو، ارے بھائی نہیں ہے تو نہیں صحیح، تمہیں تو منیراج کو آہار دینے کا پنیہ لابھ مل ہی جائے گا، یہ تو اتیتھی ہے نا، آپ جب کہہ کے تو آئیں گے نہیں. تو جو سمے ہے آہار کا وہ سمے دروازے پر کھڑے ہو کر شراوکوں کا انہیں پرگان کے لیے تیار رہنا بہت ضروری ہے. منیراج کتنا پوتر بھوجن کرتے ہیں کہ جتنا پوتر شراوک کرتے ہیں اتنا ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراوکوں کو بھی کتنا پوتر بھوجن کرنا چاہیے جتنا منیراج کرتے ہیں، کیوں تبھی تو اندشٹ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، اب ہم تو آلو جمی کے اندر کھائیں گے اور پھر مہاراج کو تو ہمیں اسپیشل ہی بنانا پڑے گا نا. یہ ہمارا دربھاگیہ ہے कि हमारे जीवन में अपवित्रता आ गई, खान पान में अशुद्धि आ गई, तो महाराज के लिए हमें स्पेशल बनाना पड़ता है और हम कहते दोष होने लग गया। हम अपना आचरण सुधारे ना। अब देखिए जरा, मुनिराज आए, हमने पड़खा लिया, तो वो खड़े खड़े भोजन करते हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि खड़े खड़े भोजन करने की क्या जरूरत है, शांति से दो रोटियां बैठ के खा लें तो क्या दिक्कत है। हम तो बचपन में खड़े ही खड़े खाते थे, है ना। हर आदमी बचपन में दौड़ते दौड़ते खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं, क्या है ना। तो हमारी अम्मा ने डांट डांट के मार पीट पीट कर मुश्किल से बैठ के खाना सिखाया, क्या ये नालायकी नहीं चलेगी। फिर जवान हो गए तो जल्दी आ जल्दी थाली लगाओ, मुझे जाना है। तो पत्नी भी उपदेश देती है, बैठ जाओ शांति से, दो मिनट खाना शांति से नहीं बैठ के खा सकते हो तो कमाते काल के हो। वो भी बैठ कर खाने का उपदेश देती है। तो मुश्किल से तो हम प्रौढ़ अवस्था में आकर बैठ के खाना सीखे, ध्यान से सुनना। अब आप ये कहते हो खड़े खड़े खाने में धर्म है, और क्या करें, बैठ के खाने में धर्म है कि खड़े खड़े खाने में धर्म है, बोलो। देखो ग्रस्त हो तो बैठ के खाने में धर्म है, और मुनिराज हो तो खड़े खड़े खाने में धर्म है। देखो भाई, एक खड़े होकर खाना एक मूल गुण है ना, 28 मिनट मुनिराज के। तो आजकल वो कहते बुफे चला है ना, बुफे सब खड़े ही खड़े खाते हैं ना, तो अपने एक मूल गुण तो आ ही गया, 27 बाकी हैं। क्यों? अरे भाई तुम गिरस्त हो, दिन्ना रात हाय हाय में लग रहे हो, तो बैठ के शांति से दो रोटियां खाओ, वो तुम्हारा सात्विक धर्म है। क्यों? खड़े खड़े खाएंगे तो मना करेंगे, है ना। और मुनिराज बैठ के नहीं खाएंगे, क्यों नहीं बैठ के खाएंगे, उन्हें भी खाना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कहाँ बैठे, अरे कहाँ बैठे, गृहस्थ के घर में, कि गृहस्थ का घर बैठने लायक है। यदि गृहस्थ का घर बैठने लायक होता तो छोड़ के ही क्यों जाते। ये तो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण रहे, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। और उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है कि बैठ के खाएं, कि उन्हें क्या काम है, हमें तो दुकान पे जाना है, क्यों। अरे भाई उन्हें यहाँ जाकर के आचार्य महाराज के पास जाकर के बताना है कि आज क्या हुआ कैसे हुआ, कोई गलती हो गई हो तो प्रायश्चित लेना है, फिर जाकर के सामायिक में बैठना है। 6 घड़ी को 6 घड़ी समझते हो, एक घड़ी 24 मिनट की, 6 घड़ी कितने हुए, 2 घंटे से कुछ ज्यादा ही हो गया ना, 2 घंटा और 24 मिनट। फिर सामायिक में बैठना है तो उन्हें कुछ काम नहीं, खाली है आपके पास, बैठने की उन्हें फुर्सत है। इसलिए वो उनके गृहस्थ के घर में रुकने का उन्हें बिल्कुल रस नहीं है, इसलिए बैठने का कोई काम नहीं है। खड़े खड़े 4 कौर खाए पेट भरा, वो भी अल्पाहार, लिखा ना खड़े अल्प निज पान में, भर पेट नहीं। दिन में एक दफे खाना है तो शांति से भरपेट खा लेने देना, कि पानी भी एक ही दफे पीना है, और पानी भी खा लेंगे जम के तो पानी नहीं पी पाएंगे, फिर पानी पिएंगे नहीं तो क्या हालत होगी, सोच लो आप। तो जितना पेट में है 1/4 भोजन 1/4 पानी, अब आधा पेट रह गया ना तो सांस भी तो लेना है ना, क्यों। तो इसलिए अल्पाहार, खड़े अल्प खाने ना, और निज पान में अपने हाथ में, और हाथ में लेने इसमें क्या दम है, थाली में जीव ले में तो क्या दिक्कत है। तो कहते हैं कि नहीं, थाली के जीवने में बहुत पराधीनता है। जब आप खड़े खड़े जीवते हो तब आप भी थाली को संभालना मुश्किल होता है ना, हाथ में लेकर के, और हाथ में लेने में बहुत आजादी है, कैसी आजादी है? देखो हम तो साधारण गृहस्थ हैं, आप जैसे ही आपके घर में जब खाना खाने जाते हैं तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो थाली की सुरक्षा इस ऐसे करना पड़ती है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर काश्मीर की सुरक्षा करना पड़ती है ना हिंदुस्तान को। कोई आता है यहाँ से डाले, यहाँ से डाले, मैंने तो डाले ही नहीं है, तो दो पकौड़े मेरे हाथ से तो ले लो। क्यों? यदि हम आपके मनाने में नहीं आते तो बीमार नहीं पड़ते, और पूरी तरह मनाने में आ जाते तो जिंदा नहीं बचते। साधारण से सेवक पर आप इतना वात्सल्य उमेरते हैं, तो मुनिराज आते अपने घर में तो उससे तो अनंत गुणा भक्ति वात्सल्य अपने हृदय में होगा ना, होना चाहिए नहीं? तो हर एक आदमी देता और थाली में रख देता, मुनिराज छोड़ते तो है नहीं, क्या होता होता उनकी हालत क्या होती बोलिए। उनको इस थाली की सुरक्षा करना बहुत भारी पड़ता, हाथ में तो क्या है, ऐसा हाथ कर लेंगे झगड़ा खत्म, अब तुम कुछ भी करते रहो। क्यों? बहुत हाथ की सुरक्षा बहुत सरल है और थाली की सुरक्षा बहुत कठिन है। दूसरी बात, हाथ में यदि कोई अधिक से अधिक रखेगा तो एक ही कोर तो ज्यादा रखेगा, इसे निबट लेंगे जैसा होगा। थाली में तो अनलिमिटेड रख सकता है, दो लड्डू रख दे, क्या कह रहे हैं बोलिए। एक तो स्वाधीनता है, दूसरी बात यह है कि इन ग्रस्तों की हालत अपने वैभव को प्रदर्शन करने की है। आप हमने सीतांबर भाई के मंदिर में देखे होंगे आपने, और सोने चांदी से भगवान मड़े रहते हैं। मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो बहुत प्रेम से पूछता हूँ, कभी आपने सोने चांदी के कपड़े पहने हैं? क्यों? अरे साथ में कपड़े पहनने की बात होगी कदाचित, तो ये सोने चांदी के कपड़े कहाँ से आ गए? क्यों? ये तो गहने हैं, कपड़े थोड़ी हैं। फिर हम भी दिगंबर कोई पीछे नहीं है, हमने महाराज के भगवान के ऊपर हम कुछ नहीं सोना चांदी नहीं लगा सकते, तो हम छत्र चमड़ों में सोने चांदी से लाद देंगे, हीरे जड़ कर देंगे, क्योंकि वैभव प्रदर्शन की आदत हमें भी कम नहीं है। क्यों? सिंहासन उनका सब पीछे, वो एक पेड़ बनाते हैं ना, वो भी सोने चांदी का था, छत्र चमड़ सिंहासन सब सोने चांदी के, क्योंकि हमें अपने वैभव को दिखाना है। बेदी मर देंगे सोने से, और ज्यादा होगा तो मंदिर ही मर देंगे पूरा सोने से। क्यों? क्या भैया क्या जरूरत है इस परिग्रही भगवान को परिग्रही बनाने की, क्या जरूरत है? तो अगर बहुत पैसा हो गया है तो उनकी जो दिव्य ध्वनि में आई है, जो जिनवाणी है, उसको घर घर पहुंचाओ। हिंदुस्तान में 10,000 मंदिर होंगे तो एक एक मंदिर में एक एक शास्त्र को पहुंचाओ, जरूरत है कि नहीं है? क्यों भैया, ये भगवान की वाणी है ना, तो यस चाहिए ना, नाम चाहिए ना। तो यहाँ तो इस मंदिर में कोई देखने आएगा और कहीं लिखा होगा तो पता चलेगा उसे कि तुमने किया है, और वो उतने ही पैसे में 10,000 जगह आपका नाम जा सकता है पूरा बाप दादों के साथ। नाम ही कमाना है तो कमाओ ना। आओ साहब, तो हमारी जो आदत है प्रदर्शन की, प्रदर्शन की आदत की वजह से हमें यदि महाराज थाली में जीमते होते तो सोने की हीरे जड़े और न मालूम कैसी कैसी थालियां लाकर अपना। देखिए हम क्या बताएं, हमने बोला हम तो भगवान की वाणी के साधारण प्रवक्ता हैं, वैसे तो आप जैसे ही गृहस्थ हैं साधारण, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार सुनाते हैं इसलिए आप इतना हमें सम्मान देते हो, लेकिन हमको साल में 9-10 महीना चांदी की थालियों में खाना पड़ता है। घर में एक थाली नहीं है हमारे पास चांदी की, घर में खाएं तो 3 साल में एक बोरी गेहूं नहीं उठता मेरे यहां। क्यों? तो क्या होता है कि वो सेठ जी की जो घर में है ना, वो सब चांदी की थालियां वे तभी निकलती हैं जब वे हमें बुलाते हैं, क्योंकि उनका इतना पुण्य है ही नहीं कि वे चांदी की थाली में खा सके। वो तो खाते हैं खाएगी लोहे की थाली में। पहले जमाने में लोहे की थाली में कैदियों को दिया जाता था खाना, क्यों? अब ये आधुनिक कैदी साहब पंडित जी लोहा नहीं है, वो क्या है? अरे वो तो स्टील है, स्टील। अच्छा स्टील है। हम नहीं जानते स्टील क्यों क्या कहते हैं, कि स्टील माने लोहा ही तो होता है कि नहीं? नहीं वो तो स्टेनलेस स्टील है। अरे स्टेनलेस हो स्टेनलेस सेट हो क्या फर्क पड़ता है, तो लोहा। अब उतना भी पुण्य हमारे पल्ले नहीं रहा, तो अब मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे हैं। क्या बोलते टोकरी मोकरी, क्या बोलते है ना, खाते ना मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि लोहे में खाने लायक भी पुण्य नहीं बचा। तो लोग आप समझते नहीं हो पंडित जी, ये मिट्टी नहीं है, ये क्या है? ये चीनी मिट्टी है। मैं गजब हो गया, हिंदुस्तान की मिट्टी भी नहीं मिली भले आदमियों को। बोझ इनके घर में जो छात्री की थालियां हैं वो तो हमारे खाने के लिए है, थाल में है ना, इनके लिए नहीं है। इनके हिस्से में तो उनकी सुरक्षा करना, उन्हें रखाना इनकी ड्यूटी है। खो जाए तो इनकी और खाए तो हम। क्यों भाई घुरा दीदी सचा। तो जब हमको लिए चांदी की थालियों में खाने को मिलता है, तो महाराज यदि थाली में खाते होते तो सोने की हीरा से जड़े बना बना के बढ़िया वो थालियां लाते और अपने वैभव को हम उन्हें प्रदर्शित करते। लोग कहते हैं कि भाई मेरे निमित्त से तुम्हें तुम्हारे कोई ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, मैं तो अपने हाथ में लेकर खड़े खड़े अल्प भोजन लिखा ना, इसमें क्या लिखा आपकी देखो, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान। एक पंक्ति में चार बातें कि दिन में एक बार और समय बता दिया मैंने, खड़े खड़े और अल्पाहार और अपने हाथ में। अब एक भोजन तो खड़े खड़े दे रहे, मेरी बात जरा सुनना, घबराना नहीं, नाराज मत होना, मैं तो सिर्फ इस पंक्ति का अर्थ कर रहा हूं। फिर बैठ गए जाऊंगा एक घंटे के लिए। अरे एक घंटे बैठ नहीं था ग्रस्त के घर में, तो फिर खड़े खड़े काहे को भोजन किया, फिर बैठ करके आराम से कर लेते। बैठने की फुर्सत नहीं थी इसलिए तो खड़े खड़े किया था। और अब आहार दान, अब आहार दान, आहार दान तो हो गया ना, ये जो है ना रोटी दाल जिसका नाम है आहार और दान आपने दिया और महाराज ने लिया, वहां दान हो गया ना, देना और लेना सब हो गया। अब कुल्ला कर लिया, मुट्ठी खोल दी, आसन खोल दिया, अब आहार दान कैसे होगा? डबल तो दो दिन में दो दफा तो होता नहीं है। कहते पंडित जी आप समझे नहीं, आहार दान दोगे 1 लाख? नहीं, नहीं, नहीं 1 लाख क्या, रोटी के कौर लेकिन 1 लाख क्या, रुपये तो रुपया का भी आहार दान होता है। आहार दान तो आहार का होता है, लेकिन क्या करें सेठ जी रुपयों में आहार दान करते हैं, रुपयों में ज्ञान दान करते हैं, रुपयों में औषधि दान करते हैं, समझे ना, रुपयों में अभय दान करते हैं। अरे ज्ञान दान तो कोई ज्ञानी जो जिसके पास ज्ञान होगा वो देगा ना, आहार दान वो देगा ना। हमने जितने दानवीर देखे आज इस जगत में, तो कोई महिला को बहन को जिसने महीनों वर्षों तक रोजाना मुनि महाराज को आहार दान दिया है, उस बहन को आज तक किसी ने दानवीर की उपाधि दी? पहला नंबर का आहार दान है, क्यों नहीं दी? क्योंकि भले ही हम कहते हैं शास्त्र के हिसाब से, अंदर में हमारी समझ में नहीं आता ये कोई दान है, उस बहन ने बहुत बड़ा काम किया है। क्यों? अंदर में हमें फीलिंग नहीं होता। किसी पंडित को आपने दानवीर की उपाधि आज तक दी? विद्वत लाल बद्दा बारधी न मानो क्या क्या दोगे, लेकिन दानवीर नहीं दोगे। मैं आपसे ये अपील नहीं कर रहा हूं कि मुझे दानवीर की उपाधि दो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ज्ञान दान सबसे बढ़िया दान है, तो जिसको जो ज्ञान जिसके पास होगा वही तो देगा। जिंदगी भर जैन दर्शन पढ़ाते रहे,
है ना, फ्री में पढ़ाते रहे, प्रवचन करते रहे, शाम सभा साथ सभा करते रहे शाम को पंडित जी, जिंदगी भर आपके मोहल्ले में आप सब सुनते रहे, कभी आपको विचार आया कि इन्हें दानवीर की उपाधि है, लोगे तो विद्या बारह ना मालूम क्या करोगे, क्योंकि हम उसे दान समझते ही नहीं है जबकि वो ज्ञान है। ठीक, अब औसत दान, किसी वैद्य को आपने आज तक दानवीर की उपाधि दी है? वो हमेशा औसत देता, फ्री में देता हो, बिना तनख्वाह के देता तो भी जी का, क्योंकि औसत दान को हम दान का मानते हैं। जिन सेठ जी ने वो औषधालय खोला उनको देते हैं। अभय दान, मेरे द्वारा किसी जीव को डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, इसका नाम है अभय दान। मनीराज ने दिया चार हाथ जमीन देख के चल रहे, कोई जीव मेरे माध्यम से दुख ना पाए। तो ये चारों दान देने वालों को हम दानी नहीं मानते हैं, और रुपया दान नाम का दान शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है, वही तो बताओ तुमने कहा, और वही दाना सबसे बड़ा हो गया है। मेडिकल कॉलेज खोल के सेठ जी दानवीर हो जाते हैं, छात्रावास चलाकर उसमें रात्रि में भोजन पर खिलाकर आलू जमी कन खिला करके ही आहार दानवीर हो जाते हैं, वो ज्ञान दान हो गया क्यों? और ये अंग्रेजी दवाइयां जो एक गोली हम खाते हैं तो पंडित भ्रष्ट माना जाएगा क्यों? उसे दिलाकर बड़ा दवा खाना खोल के दानवीर हो जाते हैं, और बाहुबली व्यायामशाला खुलवा दी हमने, पहलवान तैयार होते हैं, बैठते ही सब लोग डर जाते हैं। अभय दान दे दिया, चारों दान सेठ जी देते हैं। वो पैसे में सारे दान समा गए हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला नंबर कौन सा है दान में? आहार दान। उसके पात्र कौन है? मुनिराज। हम मुनिराज को आहार दान देते हैं और मुनिराज हमें ज्ञान दान देते हैं। कहां लिखा बताओ, कोई साथ से बताओ, पंक्ति पूजन करते हो दस लक्षण धर्म की, धन साधु शास्त्र अभय देवैया त्याग राग विरोध को। बे साधु धन हैं जो ज्ञान दान और अभय दान देते हैं, आहार दान और औषध दान नहीं देते। दे किसी को आहार दान नहीं देते, औषध दान नहीं देते। आहार दान और औषध दान हम ग्रस्त मुनिराजों को देते हैं, और मुनिराज हमें ज्ञान दान और अभय दान देते हैं। पूजा में लिखे धन शास्त्र ज्ञान अभय दिवैया त्याग राग विरोध को है। तो साधु एवे धन्यवाद के पात्र हैं। तो मुनिराजों का जो आहार है इस सबसे नंबर वन पर है। ये क्यों है? कि वो मुनिराज के तप में, उनकी आत्म साधना में, ज्ञान साधना में वो निमित्त है। यदि नहीं मिले उनको आहार तो जीवन ही समाप्त हो जाए, तो वे कब आत्मा की आराधना करेंगे, कैसे ज्ञान दान देंगे? बोलो तो ये मुनिराज आहार दान कैसे लेते हैं वो बात मैं आपको बताई। देखो क्या लिखा, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कचलोच करत न दरत परिश्रय सो लगे निज ध्यान में। कचलोच कर केसों का लुंच करते हैं, क्यों क्यों बनवाने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा धर्म हो जाता है अपने को तकलीफ देने में? अरे भाई बनवाने जाएंगे तो नाई को बुलाना पड़ेगा, पराधीन हो जाएंगे, फिर उसको पैसा देना पड़ेंगे, तो फिर किसी गृहस्थ से मांगना पड़ेगा, बहुत झंझट है। और उसमें श्रृंगार की भावना है। ये तो क्या है कि जैसे मुनिराज लोग करते हैं ना केस लंच, तो उनमें नियम है कि दो महीने से पहले नहीं करेंगे और चार महीने के बाद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नियम है ना? ऐसा नहीं है कि चार महीने तक नहीं करें, चलता रहे छह महीना भैया ऐसे औरतों ऐसे बड़े बड़े बाल रख लें, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रोजीना करते रहे एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया क्लीन सेफ। दो महीने तक नहीं करेंगे तो डाली मुझ कैसी आ जाएगी, और जब करेंगे तो उगेगी भी तो ऐसी बिखरी बिखरी। श्रृंगार की भावना नहीं है, और पराधीन की दृष्टि नहीं है, इसलिए मुनिराज हमारे ये करते हैं। और जो असली अंतरंग की बात लिखी है वो बहुत ही मार्मिक है, अरिमित्र है ना, बोल देखो आपकी किताब में, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति करन। तो शत्रु और मित्र, महल और मसान, कंचन और कांच, कंचन माने सोना, और निंदा करने वाला और स्तुति करने वाला, और अर्घ उतारने वाला और असी प्रहार तलवार मारने वाला, मैं सदा समता धरन, सब में एक सा संभाव, ना उससे राग ना उससे द्वेष। चेलना ने उपसर्ग दूर किया, सैनिक ने उपसर्ग किया, और जब मुनिराज ने नेत्र खोले तो दोनों को एक धर्म वृद्धि का आशीर्वाद निकला, उसे श्राप नहीं दी और इन्हें होने दिया, बस खत्म। ये हमारे मुनिराजों की अंतरंग दशा है। ये जो दिगंबर मुनिराज हैं, ये साक्षात सिद्ध जैसे ही हैं। मैंने जब उनकी देवशास्त्र में पूजन लिखी थी 1956 में, आज क्या है 6, कितने साल हो गए, 40 के 50 साल पहले लिखी मेरी पूजन है, और उसमें आज तक मेरे विचार बदले नहीं हैं एक दिन भी। उसमें मैंने लिखा, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। देखो ये लिखा, और ये मैंने अपनी तरफ से कुंद कुंद की गाथा में है कि मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, क्योंकि सिद्ध तो हम कभी देखने नहीं जाएंगे, मोक्ष मार्ग में हैं और वे मोक्ष में हैं और जल्दी ही मोक्ष पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा लगा, मेरे ग्रंथ दिगंबर सद ज्ञानी, स्वातम में सदा बिचरते जो, ज्ञानी ध्यानी निज रस सानी, द्वादश विध तपनित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। मैं अभी ताजी ताजी घटना सुनाता हूँ चक्रेश जी आपको, कि मैं भोपाल गया था महावीर जयंती पर, तो वहाँ एक महाराज थे, उन्हें जंगल वाले बाबा कहते थे, वो नाम था उनका चिन्मय सागर जी, विद्यासागर जी के शिष्य थे, आपने जाना हो जंगल में, तो वे वहाँ विराजते थे। मैं घर पर जब निमंत्रण आया था अध्यक्ष का, समाज के अध्यक्ष का, तो मैंने ये पूछा था कोई महाराज हैं कि हाँ हैं, तो मैंने कहा पहले उनसे पूछो कि वे मुझको बुलवाना पसंद करते हैं कि नहीं, यदि उनकी आज्ञा हो तो मैं आऊँगा। तो उनने पूछा और उनने बहुत खुशी बताई, तो मैं गया। महावीर जयंती कल थी, एक दिन पहले की घटना, 13-12 के दिन, तो हमारा दोनों का एक साथ दोपहरी में धर्मशाला में, बहुत बड़ी जगह है उसमें, हमारा दोनों का एक साथ प्रवचन था। तो महाराज ने कहा कि मैं पहले पंडित जी से 5 मिनट में अकेले में बात करूंगा, फिर बाद में सभा में जाएंगे। तो वो अंदर बैठे थे, मैं गया, महाराज ने पहले तो बहुत तबीयत वबीयत की पूछी, यहाँ वहाँ की बातें करी, मेरे पास ये साथ में था और वो महाराज से आज्ञा लेकर के उसकी पूरी मैंने फिल्म बना ली है ना, मैं बोल रहा हूँ तो कोई बात झूठी नहीं निकल जाए, सुनिए। तो मैंने, महाराज ने मेरे से कहा कि पंडित जी तुम ये मानते हो कि नहीं कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होते हैं होंगे है? तो महाराज क्या बात करते हो, ये तो शास्त्र की बात है, इसमें नहीं मानने की क्या बात है। फिर उनने मेरे से कहा कि अच्छा मानते हो, कि हाँ, तो आप ये बात सभा में कह सकते हो, जो भी जिस फिल्म भरा होगा लोगों ने उन्हें। मैंने कहा हाँ हाँ महाराज, इसमें क्या बात है। फिर बोले, महाराज पंडित जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा मत बोलना कि जिसके बारे में मुझे कुछ बोलने को बात होना पड़े। तुमने बहुत जोर से हंसा और मैंने कहा महाराज बाध तो आपको होना पड़ेगा लेकिन मेरे समर्थन में बोलने के लिए बाध होना पड़ेगा। कुछ नहीं है फिर हम आगे दोनों बैठ गए स्टेज पे। फिर मेरा पहले व्याख्यान हुआ बाद में महाराज का था। मैं दो मिनट सुनाता हूँ ज्यादा लंबी नहीं है घबराना नहीं। तो मैंने बोला कि ऐसा ही घटना है कि आज के जब मैं हम 20 21 22 बरस के थे तो हमें अध्यात्म का रंग लगा तो हमने जूते छोड़ दिए थे ये सब ऐसे करके बाल माल घुटा बुटा करके ऐसे रहते थे। और मैं रहता था अशोक नगर में भाई साहब रहते थे कोटा और आपस में बहुत पत्रफार करते थे तो बैराग बैराग की भरी बातें होती थी। तो भाई साहब को शक हो गया कि ये हुकुमगंज दीक्षा लेके मुनि हो जाए तो उनने मेरे को पत्र लिखा वो अपने मेरे पास पड़ा है कि हुकुमगंज जमाना अच्छा नहीं है और गृहस्थी में भी धर्म होता है। आज मैंने बहुत बहुत लिखा इसलिए अभी मुनि मुनि होने की बात जमाना इसके लायक नहीं है। मैंने उन्हें उत्तर लिखा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिट्ठी पंडित रतन चंद की है। कोई पंडित एक कैसे लिख सकता है कि जमाना मुनि होने लायक नहीं है जबकि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे। क्यों जमाने को दोष देते हो? अपने में कमजोरी हो तो अलग बात है ये अपना दोष है ये जमाने का दोष तो नहीं है ना। यदि कोई में गलती है तो वो व्यक्तिगत है ये जमाने के दोष की नहीं है। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो? और अपन तो उन लोगों में से हैं कि उस दिन मैं कब पाऊं कि जब घर को छोड़ बन जाऊं वो दिन कब पाऊं। तो मैंने कहा वो चिट्ठी उनके पास सुरक्षित है आगे और इन्हें करीब मैंने बोला ना वो चिट्ठी की 57-58 की बात होगी तब से आज तक हमारा इस मामले में कोई विचार बदला नहीं है। क्या तो सर ने बहुत तालियां दी सभा में। महाराज ने जी कहा फिर और ऐसी बहुत बातें मैंने कही। फिर महाराज का प्रवचन हुआ तो महाराज ने यहां से शुरू किया कि मैंने पंडित जी से एक कहा था अभी अकेले में कि ऐसा मत बोलना कि मुझे कुछ बोलने को बाध होना पड़े। तो इन्होंने कहा था बाध तो होना पड़ेगा और मैं अब हार स्वीकार करता हूं कि मैं बाध हूं इनकी बात का समर्थन करने के लिए। पर पूरे प्रश्न का कैसे बिल्कुल पूरा मतलब जैसे दिव्यानंद जी महाराज के साथ हुआ था ना अपने समय चार पांचना ऐसा कैसे सब मेरे पास है वो देखा ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुनि धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है और पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे ये बात भी 100% सत्य है लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि जो है ऐसा तो कोई व्यक्ति इससे वो सच्चा मुनि है। वो मुनि धर्म का जो स्वरूप है उसकी कसौटी पर खड़ा उतरेगा तो है और नहीं उतरेगा तो नहीं है। और ये उनका काम है कि वे अपने कसौटी है वे अपने को जांच के देखें हमारा ये काम नहीं है। समझे ना हम तो इस जिनवाणी के कीड़े हैं तो आप कहोगे छड़ाला हमारे सामने रख दिया तो हम आपको छड़ाला सुनाने लग गए। समय साथ रख दिया तो समय साथ सुनाने लग जाएंगे। पद्म पुराण रखोगे तो पद्म पुराण सुनाने लग जाएंगे। ऐसा कोई बताओ कि हमने एक शब्द भी ऐसा बोला हो कि जो शास्त्र में नहीं हो और हमने बोला है ना। देखा देखो इसमें यूं है सकल संयम चरित ये सकल संयम है महावृत है और सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगट आप नींद मिटे सब पर की प्रवृत्ति सब। अब स्वरूपाचरण की बात करते हैं। एक होता है चारित्राचरण एक होता है स्वरूपाचरण। ख्याल नहीं ना ये चारित्राचरण है जो बाहर से दुनिया को दिखता है कहते जादू तो वो है जो माथे पर चढ़ के बोले है ना। और एक है स्वरूपाचरण कि अपने स्वरूप में लीन होना, निर्विकल्प होकर। तो लीन होने के पहले अपने भगवान आत्मा को जानना पड़ेगा ना, तो वो शर्त इसमें लिखी है। जिन परम तैनी सुविध छैनी दार अंतर मरणादि अरुरा विद्यानंद जी महाराज के साथ में जो अपना समय सार बांचना हुई थी उसमें इसके बाद बहुत विस्तार से चर्चा आई थी इस बात की। वरुणादि अरुरागादि तेने जो भाव को न्यारा किया, क्यों? क्योंकि समय सार के जीवाजीव अधिकार ने सिर्फ इतनी ही बात बताई है। वरुणादि माने 20 चीजें, रूप रस गंध स्पर्श आदि पुद्गल की, और रागादि माने 9 चीजें, राग देश क्रोध मान माया लोक गुणस्थान मायगणा स्थान। ये 29 चीजें मैं नहीं हूं, मेरे इसे भिन्न है, तो ये स्वरूप बताया था। और वो हमने साधना चैनल पे भी चलाई थी पूरी फिल्म, आपने देखी होगी। यहाँ आती है कोठारी जी, अब समय बदल गया, पहले 10:20 पे आती थी, अब सुबह 6:40 पर आती है और 7 तक आती है। आप लोग जरूर देखा करें जिसको देखना हो। ये छड़ाला वगैरह में सब प्रवचन उसमें हैं, समय सार के भी हैं, और ये 12 व्रतों के हैं, सब प्रवचन क्रम क्रम से आएंगे। आप साल भर तक देखेंगे ना, तो वो बराबर 3 से रेगुलर चल रही है और आगे भी चलेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, वरुण आदि अरु राग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। वरुण आदि में मुख्य रूप से शरीर, स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव दुनिया जितना संयोग है वे सब वरुणादि में आ गए। और आत्मा के जो विकारी भाव हैं, संयोगी भाव हैं, क्रोध मान माया लोग, ये सब रागादि में आ गए। तो इन दोनों से अपने आत्मा को भिन्न जाना, इसमें तो लिखा है न्यारा किया। न्यारा करना क्या है? न्यारे तो हैं ही, न्यारा जानना है, जानने का नाम ही करना है। एक भाई हमारे पास आए और बोले, पंडित जी अब हमारे दोनों भाइयों की बनेंगी नहीं, आप हमारे गुरु हो, दोनों भाइयों की आप में श्रद्धा है, तो आप हमारा निपटारा करवा दो, नहीं तो ये सांझे की हांडी चौराहे पर फूटेगी और हमारी बदनामी के साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी। धमकी देने, तुम निपटा दो। मैंने क्या निपटाना है कि हमारा बंटवारा करा दो। मैंने क्या बांटना है बोलो, तो क्या बांटना है? माँ बाप बांटने हैं, कभी तो बटे ही नहीं सकते, कैसे बांटे? एक भाई को माँ दे दें, एक भाई को बाप, चलेगा? ये बंटवारा सही नहीं होगा। तो कैसा, आधा बाप और आधा माँ दो, तो माँ बाप मिलेंगे कि लाश मिलेगी उनकी? तो भाग्य से 3 भाई हुए तो फिर क्या करेंगे? माँ बाप बट नहीं सकते, तो अब क्या बांटना है? पत्नियां? क्या बात करते, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो नक्की है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो बाल बच्चे, तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, इनके 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां तो मैंने दे दो, 2 लड़के इनसे ले दो। नहीं, मैं लड़का वाला बोला मैं नहीं करूंगा, मेरी एक एक हुंडी करोड़ करोड़ की, करोड़ करोड़ के कर्जे में कैसे बदल दूं मैं? तो बाल बच्चे नहीं बांटने हैं, माँ बाप नहीं बांटना है, पत्नी नहीं बांटना है, तो क्या बांटना है मुझे बताओ। तो तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपया है, समझ लो 3 करोड़ की संपत्ति है, तो दोनों तुम नहीं जानते हो कि हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं? तो बचे हैं कि नहीं बचे बता मुझे, है ना? अब देखिए कि दोनों भाइयों के 1.5 करोड़ हैं। अब माँ अस्पताल में गई और वहां से खबर आई कि लड़का हुआ है, तो दोनों का धाड़ा पड़ गया ना 50-50 लाख का। क्यों? अब 1-1 करोड़ के मालिक रह गए, जानते नहीं, सब जानते हैं तो नोट बांटने हैं क्या? कि गिनती के ये नोट तुम ले लो, ये तुम ले लो। अरे भाई, जो बता है उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, जैसे पत्नी बच्चे, जो इकट्ठे हैं उसे बांटा नहीं जा सकता। तो करना क्या है? बस सिर्फ अभी इकट्ठे हैं तो दोनों 3 करोड़ के मालिक हैं, देखो समझ गया ना, और अलग हुए तो बोलो क्या करना है। तुम्हें 3 करोड़ से मालिक होकर 1 करोड़ का बनना है कि 3 करोड़ का? 3 करोड़ के बना रहना हो तो प्रेम से रहो, और 1 करोड़ का बनना हो तो समझ लेना तुगना खर्चा हो जाएगा। अकेला चौका का नहीं, चूल्हे का नहीं, चंदा वाले भी मांगने आएंगे ना तो 3 नाम के अलग से खाना पड़ेंगे क्यों अजय प्रसाद जी चलो होना नहीं आ रहा। इतने बनिया होशियार हैं, चूल्हा अलग, चौकी अलग, दुकान अलग, धंधा अलग, और चंदा वालों को हम तो एक हैं बस क्यों? तो इसलिए यहाँ कहते हैं भाई कि वरुणाद अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया माने न्यारा जाना। अब जान के क्या किया कि निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गहो, अपने में से अपने आत्मा को अपने द्वारा स्वयं अपने आत्मा को जानना है। इसमें पराधीनता की कोई बात ही नहीं है, यानी कोई पराधीनता की बात हो तो ऐसा है ही नहीं। ये धर्म तो स्वाधीनता का नाम धर्म है। देखो मैं कहता हूं कभी कभी कि आत्मा का अनुभव जिसकी ये चर्चा चल रही है, एक कप चाय बनाकर पीने से ज्यादा सरल है। ये क्या बात करते हो, चाय तो हम रोजीना पीते हैं और आत्मा के अनुभव में तो पसीना छूटता है। ये 40-40 वर्ष हो गए आत्मा रटते रटते, और भगवान जाने आत्मा कहाँ है, अब कैसे है? अरे हम तुम लोग हमसे पूछते हो ना पंडित जी आत्मा का अनुभव कैसे हो, मैं तो तुम्हें नहीं है, इसका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बोली है तो क्यों? मैंने कहा देखो अब ये जरा एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण, आप यहां से जाओ और आपको गुड़गांव जाना है, समझो कहीं जाना है, जयपुर जाना है, तो वहां से आप अपनी कार से रवाना हुए और रास्ते में कार खराब हो गई। अभी 4 किलोमीटर इस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है और 4 किलोमीटर उस तरफ तक कोई चाय की दुकान नहीं है, और तुम्हारा 2 बजे के दिन के चाय पीने का समय हो गया, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा, बोलो क्या करेंगे? अब एक कप चाय कितनी कठिन है, चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, फिर स्टोव चाहिए, क्यों फिर माचिस चाहिए, माचिस नहीं हो तो काम खत्म, फिर छन्नी चाहिए, कप बसी चाहिए, कितनी चीजें जोड़ो तब एक कप चाय मिलेगी। और अनुभव आत्मा का अनुभव करना है तो क्या है, कुछ नहीं चाहिए, आंख बंद करके बैठो ख्याल में अंदर में चले जाओ, जिसको देखना है वो आत्मा, जो देखेगा वो आत्मा, बस संबंध से हो जाएगा। बोलो सरल क्यों है? क्योंकि स्वाधीन है। पराधीन चीज कठिन होती है और स्वाधीन चीज सरल होती है। ये जगत के संयोग पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलते, तुम 1000 प्रयत्न कर लो और जब पुण्य खलास हो जाएगा तो एक दिन में बिघटते देर नहीं लगेगी। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माप हैं औगुण करे 1000। और गया बस खत्म। बड़े बड़े राजाओं को अपने जंगल में भटकते महाराणा प्रताप जैसे नहीं देखे, क्यों? बड़े बड़े करोड़पतियों को करोड़पति होते नहीं देखा? और दूर जाने दो ना, एक है सीलिंग का चक्कर, इसमें अच्छे अच्छे करोड़पति सड़क पे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो मेरे कहने का अर्थ ये है भाई, ये तो पुण्य का खेल है, लेकिन आत्मा के अनुभव में पुण्य की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि करोड़पति को ही होगा आत्मा का अनुभव, मैं दिगंबर हूँ कुछ भी नहीं हूँ, उसको भी चिड़िया को भी हो सकता है, सम्मा दर्शन होता ना है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, अरे साहब कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करें, हम तो कोई बड़ा काम करें? अरे इससे बड़ा काम इस जगत में नहीं है। सुनो निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गा, निज मैं निज के लिए निज के द्वारा स्वयं को स्वयं ग्रहण करना है। और कितनी स्वाधीनता है, और गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु न भेद रहो, कि ये गुण है ये गुणी है, ये कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है और गिनते फिरो, ये कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिड़िया को सम्मा दर्शन होता है, वो क्या जाने ये कौन से गुण है, अनंत कौन से है, फलाना कौन से, 47 शक्ति, ये पता होगा उसे, होता है कि नहीं होता उसे सम्मा दर्शन? देखो देखो जहाँ ध्यान धाता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना, जहाँ चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृढ़ ज्ञान वृत ए तीन धा एक लस। नाम तीन है समझना ज्ञानता लेकिन है एक ही चीज। आत्मा में अपनापन ये मैं हूं उसका नाम सम्मदर्शन। आत्मा में ये मैं हूं ऐसा जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान और उसका ही ध्यान करना उसमें लीन हो जाना उसका नाम सम्यक चाहता। एक आत्मा ही तो हुआ। जैसे मैंने कल को उदाहरण दिया था ना कि आजकल जो है बन बाय वन गेट फ्री, एक खरीदो एक चीज फ्री में मिलेगी। क्यों यहां कहते हैं वन बाय टू गेट फ्री। आत्मा का अनुभव करो तो तीन चीजें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित तीनों एक साथ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है परमाण में निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे जो ज्ञान सुखमय बल सदा नहीं आन भाव जो मुखे में साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुतस फलनते चितपिंड चंद अखंड सुगुण करंद चितपुण कलन से समय तेजी से भाग रहा है और ये सारा समय सार भरा हुआ है ना। कल हम महाराज जी के पास गए थे विद्यानंद जी के पास तो कहेंगे छेडाला का सिविल चला रहे महाराज हम तो महाराज बोले कि लोग कहते हैं कि छेडाला गागर में सागर भर दिया है लेकिन मैं नहीं मानता। हो गया महाराज क्या बात करे। महाराज बोले कि एक सरसों के दाना में सूखी नोक से छेद करो और उस छेद में सारा आगम भर दिया है छेड़ाला ऐसा। गागर तो बहुत बड़ी होती है क्या? गागर तो बहुत बड़ी होती है खल में है ना। तो ऐसा है देव ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे विस्तार करेंगे तो अपने पास बहुत समय लगेगा। अपने पास समय तो हो गया है लेकिन देखो एक दो बात छंद में बोल के खत्म करूंगा। क्यों चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्र नाग नरेंद्र वाही इंद्र के नाही कहो। एक समय क्षण तो बहुत ज्यादा होती है क्षण का अनंतमा भाग। इस प्रकार के आत्मा में लीन हो तो जो सुख तुम्हें मिलेगा वैसा सुख इंद्र को नहीं है नागेंद्र को नहीं है नरेंद्र माने चक्रवर्ती को नहीं है। तो चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि तो होते हैं ना दोनों है लेकिन सम्यक दर्शन का सुख है चक्रवर्तित्व का नहीं हो। क्यों कि वो चक्रवर्तित्व भोग वाला सुख है वो तो संसार की जाति का है। वो ये अनुभव वाला सुख है मोक्ष में जैसा सुख है ये उस जाति का है। फर्क कितना है कार हम आप जयपुर आओ और एल एम मिश्री मां बाप बहुत प्रसिद्ध है कभी खाया हो तो क्यों तो मिश्री मां बाप आपने उसने चखाया चलो चखो साहब तो आपने चखा उतने में और एक किलो खाने में बोले क्या फर्क है स्वाद में है? स्वाद तो एक सा ही है ना। तो समझ लो सम्यक दृष्टि ने इतना चखा है और सिद्ध भगवान ने पूरा एक किलो खाया है। लेकिन जो वो चखेगा वो एक किलो खाए बिना रहेगा नहीं। देर है तो अंधेर नहीं है। अब आज नहीं हूं तो पैसा तो कहेगा साहब मैं आऊंगा घर से फिर ले जाऊंगा और आएगा और ले जाएगा जितनी ताकत होगी जितना ले जाएगा खाएगा। समझना है ना ऐसे हम में आज ताकत नहीं हो इस समय दृष्टि में और वो आज ना पूरा प्राप्त कर पाए लेकिन उनने चख लिया है तो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों बरसों लगने वाले नहीं है उस चीज को अवश्य प्राप्त करेगा। देखो एक तो मुझे ये बतानी थी आपको और एक ये बतानी है कि निज माँ ही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबंधित भजी। उनके अपने आत्मा में वे जान तो रहे थे आत्मा को और जानने में आ गई सारी दुनिया लोक अलोक प्रतिबंधित हुए उन्हें जानने नहीं गए वे जानने में आ गए कि क्या फर्क है जानने में जाने तो एक इच्छा के बिना नहीं होता। इच्छा तो उनकी है नहीं किसी को जानने की इच्छा नहीं है लेकिन सारी दुनिया जानने में आ रही है तो सारा लोकालोक उनके जानने में आता है। देखो अंत में वो आपसे निवेदन करते हैं इनमें ज्ञान आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। इन शब्दों का मेल तो देखो कितना सुंदर है। यह जानी आलस हानि साहस ठानी, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। यह सिख आदरो, मेरी ये सीख मानो। जब छड़ाला शुरू हुआ था तो वहां एक बात कही थी, कहें सीख गुरु करुणा। अब वो सीख पूरी हो गई तो वो कहते इस सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निधि हित करो। जब तक बुढ़ापा न आ जाए उसके पहले आत्मा का कल्याण कर दो। कुरा जी भी हमारे तुम्हारे लिए तो नहीं जा पाए, ये तो चक्र जी के लिए है। क्यों
आप और हम भी शरीर से बूढ़े हो गए, आत्मा से बूढ़े हैं
ना। मैंने कहते जब तक बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ये काम कर लो, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ का काम है। जब सब चीजें सुधर हो जाएंगी तब ये काम नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना। बहुत से लोग कहते धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, ख्याल में ये बात उन्होंने लिखी। और फिर देखो दो पंक्तियां और सुनाऊंगा, घबराओ मत। यह राग आग बहे सदा, यह राग तो आग है, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो चाहे मंद राग हो चाहे तीव्र राग हो, चंदन की आग हो चाहे नीम की आग हो, आग तो आग है और वो तो जलाने का काम कराएगी। ये बात अलग है, गरीब आदमी नीम की लकड़ी से जलता है, बड़ा सब आदमी चंदन की लकड़ी से जलता है, लेकिन जलते दोनों हैं, है ना। ताते समा मृत से ये, इसलिए समता रूपी रस का पान करो। चिर भजे विषय कसाय, यह विषय कसाय तो अनादिकाल से सेवन किए हैं, बहुत काल हो गया है। अब तो त्याग निज पद भाई, अरे भैया अब तो छोड़ो, कितनी करुणा पूर्वक कह रहे, अपने निज पद को प्राप्त करके इन विषय कसाय को अब तो छोड़ो, कब तक करोगे, ये तो अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं। सुबह शाम रोटी दाल खाते खाते कब तक खाओगे, है ना। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सुपद रथ दाव मत चूको है, तुम्हारा ये दाव लग गया है, ये दाव चूकना नहीं, ये मनुष्य भव में तुम्हारा ये दाव लग गया है। महापुण्य के उदय से ये अरहंत भगवान की वाणी, परम गुरुओं की वाणी हमें प्राप्त हो गई है और हमारा यहाँ इस मंदिर में हम आ गए हैं, ये बात हमें सुनने सहजने को मिल गई है। ये मनुष्य भव ऐसे ही गंवाने लायक नहीं है, अपनी जितनी शक्ति हो पूरे समझ कर आत्मा का अनुभव करके संयम को ध्यान करके जितना मोक्ष मार्ग पंचम काल में चला जा सकता है हम सब अवश्य चल रहे हैं।